तो कृष्ण की कमर ही नहीं खुली हुई तो फल में क्या बांधेगी। सत्य कार्य रस्सी ले आओ, अपने घर की सारी रस्सी जोड़ती गई बांधती गई फिर दो अंगुल कर पिता जाकर अपने घरों से लाओ। अपने घरों से लाई और एक एक करके जोड़ती गई रस्सी लंबी होती गई किंतु नजर क्या भगवान की माया या क्या दो अंगुल से भी कम कर ये कम क्यों पड़ी इसका इन्होंने बतलाया। कृष्ण की इच्छा हुई, कृष्ण तो स्वयं भगवान है, उनकी इच्छा शक्ति की तरह बढ़ती ऐश्वर्य शक्ति और कृष्ण की जो भी इच्छा होती है उनकी इच्छा को पूर्ण करती है। कृष्ण इच्छा की मैया जो दुर्गा हमें लौ पाती है यदि बांध देगी तो अपने सखाओं के साथ में खेल नहीं सकती और गाय चरने के लिए नहीं जा रही है और बछड़े भी दूध नहीं पी रहे हैं मेरे लिए या जाएंगे तब गाय दूध देगी तो पिएंगे। इन सब कारणों से मन ही मन में सोचा भैया हमको मजा इसलिए ऐश्वर्य शक्ति ऐसी विचित्र लीला की रस्सी लंबी होती गई कृष्ण की कमर देव की क्यों किंतु प्रत्येक बात दो अंगुल ही अंगुल किस लिए भक्त की साधना का परीक्षा जो सदा मैया बांध रही है उनकी कमर बंद नहीं गई प्रतिज्ञा की आज नहीं सारा दिन नहीं सारा जीवन बांधती होंगी किंतु बांध करके ही छोड़ेंगी प्रतिज्ञा की और बांध नहीं लगी परिश्रम से थक करके पसीने से तर पर हो गए सिर्फ बांध जैसे कि उनकी सहेलियां कह रही है अरे सखी इसके ललाट में बंधन नहीं है मत बांधो नहीं बंधेगा किंतु वो कह रहे हम तो बांध करके रहेंगे मुख पीला हो गया लज्जा से भर गया मैं अपने बेटे को नहीं बांधता एक भगवान हे नारायण मेरी लज्जा रखो नारायण है तो कोई कृष्णी तो सोचा कि मेरी भैया परिश्रम से क्लांत हो गई पसीने उसके तक निकल रहे केस के बंधन खुल रहे हैं तुम जितने थे केस में लगे हुए सब गिर गए और बड़ी लकी तो गया आई और गया आने से क्या हुआ उनकी जो ऐश्वर्य शक्ति जो थी जो बांधने नहीं दे रही वह कृपा शक्ति जो ही आई कृपा शक्ति भगवान की समस्त शक्तियों से श्रेष्ठ या बात सुन लो कहो या कृपा शक्ति समस्त जितनी की शक्तियां हैं उनसे ये सब कुछ जहाँ वो कृपा शक्ति आई ऐश्वर्य शक्ति वहां से निकल करके भाग गई और कृष्ण अधिक रस्सी की जरूरत नहीं पड़ी कोई झूला बांधने वाली रस्सी थी बस उसी से कृष्ण को बांधा सामने से बांध करके एक टेरा लगा करके और पीतल के पीछे बांधी जी कृष्ण का हाथ न जाए तो खोल खोल बांध दिया बांध करके सखा लोग में आ गए देखो उसको देखते रहना मैं अपने घर के काम में जा रहा किंतु गई की गई किंतु मन कहाँ रहा कृष्ण में ही अटका रहा उसी की चिंता कर रही है गई अब किसी काम में मन नहीं लग रहा इधर सब सखा कहते हैं कि मैं खोलूं खोलने गया वो नहीं खोलते अगर हट हम मधुमंगल का जब मैं खोलूंगा सब इधर कहते किसी से नहीं किया वात्सल्य रस का बंधन वात्सल्य रस से ही अथवा मधुर रस से खुल सकता है गोपियां खोल सकती है भगवान नंद बाबा खोल सकते हैं, जो दुर्गा जी की गांठ को खोलना सहज नहीं है, किसी से नहीं सकते, इसलिए सखाओं से तक खुल नहीं थी। और इतने में बलदेव बाहर गए थे उपानंद जी के घर भैया के साथ, वो आए कृष्ण को बंदेव में देखा, अरे उसको कौन बांधा, कोई भी होगा उसे डर के देखा। किसी ने कहा कि इनके कान में मैया ने बांधा, बस उनकी सारी शक्ति हवा निकल गई। भैया का नाम सुनते ही ठंडे पड़ गए। इतने में कृष्ण ने कहा, सखाओ ने, हम लोग खेल रहे हैं ओखल को और तुम खींचो और हम घर से बाहर जाकर देखते। कृष्ण को याद आई सत्याभिधातु में निपक्त नारद जी ने अभिशाप दिया था नल कुबार मानिक्रेन कुबेर के पुत्रों को, जाओ वृक्ष हो जाओ, दंड होकर के नग्न होकर के स्त्रियों के साथ में चलते ही कर रहे थे, जाओ वृक्ष हो जाओ, लज्जा नहीं है तुम्हें, तो वृक्ष हो जाओ। कब उद्धार होगा, तो उन्होंने बताया था कि कृष्ण जन्म लेंगे द्वापर के अंत में, उनके स्पर्श से तुम लोग इसलिए खींच करके घर ले जा रहे। क्या हुआ इसके बाद में माधव महाराज जी उसे बतला ली,
अरे मेरे सिर पे मती भारी उतारो रे भारी, अरे मेरे सिर पे मती Okay.
ભગવાન કે કૃપા છે હરી કથા યહા પર બહુ અસ્તુ કરતે નગર કે વિભિન્ન હરી કથા ભી સબ લોકો ને આદર આજ પંચમ દિવસ કૃષ્ણ કૃષ્ણ કોઈ લીલા કથા શ્રવણ કરને સે સબ કુછ હો જાય सागर को पार हो जाता है। यहाँ तक कि भगवान की लीला कथाएं को सुनना ही भव सागर से पार होना है। और कृष्ण का प्रेम पाने कृष्ण को प्रेम की प्राप्ति करा इस प्रकार से जो विमुख होगा वो आत्मघाती होगा होगा और विशेष करके महापुरुषों के द्वारा यदि कथा कही जाती है तो उसका प्रभाव एक निराला ही और इंद्र को दमन करने के बाद कृष्ण ने यज्ञ पत्नियों की इच्छा पूरी कृष्ण को भूख लगी थी वो चारने के समय ब्रह्माओं से कहा ले जाओ इच्छा मांग करके लाओ ब्राह्मण कर कहीं तपस्या यज्ञ कर रहे हैं उनसे मांग लाओ। उन लोगों ने नहीं किया तो वो खींच गए मृगाजन की पत्नियों से मांग लाओ जाओ इच्छा में कहीं अनादर भी होता है कहीं आदर भी होता है तो इसके लिए मत घबराओ। जैन की पत्नियों से कहा वो सुनते ही हाल में भर भर कर पकवान सब लेकर के चल पड़े और जिन जगह पत्नियों को उनके पतियों में पतियों के घर में बंद कर दिया वो तो पहले ही से शुरू करके नीचे से बाकी जो रही सब हाल में भर भर कृष्ण के पास में आई और कृष्ण का अद्भुत रूप सौंप करके देखा। बोलिए अब हम घर नहीं जाएंगे हमारे पति नहीं ग्रहण करेंगे भाई माता पिता भी ग्रहण नहीं करेंगे और जाकर के कली भी जी गया। कृष्ण ने उनको समझाया आप लोग की पत्नियां हैं इसलिए मैं इस रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। अगले जन्म में तुम मुखी होकर के आना मेरे आशीर्वाद से और उस समय तुम्हारी इच्छा उसका सुन करके और उनको लौट आए। उनके पतियों ने देखा कि हम ब्राह्मण होकर के सारे वेदों को जानने वाले सब यज्ञों को करते हैं उपनयन संस्कार भी हो गया और हम भगवान निकट आए और उनका दर्शन भी किया भोजन करना तो नहीं किया और ये सब समय अपवित्र रहने वाली वेद भी नहीं पढ़ती है वेद में भी अधिकार नहीं और उन्होंने भगवान को दर्शन किया खिलाया पिलाया और संतुष्ट कर दिया बस उनके चरणों में गिर करके क्षमा मांगी लेकिन नंगी होकर के स्नान कर रही थी और फिर कृष्ण आए सखाओं के साथ में कुछ और उनके बस लेकर के ऊपर चढ़ गए और फिर चोरी करने लगे और तो नंगी होकर के आकर के हमें प्रणाम करेगी तब उन्होंने कहा कि हम एक अंश से जाकर कहेंगे नंद बाबा जो प्रकार से नाजिश करेंगे कृष्ण हंसने लगे कंस हमारा क्या करने का। अंत में गोपियों ने कृष्ण की इच्छा अनुसार जल से निकल करके उनको प्रणाम किया और कृष्ण ने कहा तुम्हारी समस्त इच्छाएं को अपने कार्तिक महीने में
शरद पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा
शरद पूर्णिमा ने तुम्हारी इच्छाओं को वे खुश होकर जाते अपने घर में और अगले वर्ष जब कार्तिक आरंभ होता है तो उस समय में पहले दिन पूर्णिमा होती है कृष्ण ने बंसी बजाई और जो मूर्तियां जहां थी वहीं से घर के सब के काम काजों को छोड़कर कृष्ण के तरफ से दौड़ कर एक दूसरे से बतलाया नहीं और मैं कोई घर की प्रेही की छोड़ दिया, कोई रोटी पका रही थी बस अति जले छोड़ दिया तवे पर ही, कोई घर में तालियां बना रही थी तो उसको उसी स्थिति में छोड़ दिया, कोई पति की सेवा कर रही थी उनके लिए गर्म जल बना करके स्नान करने के लिए वो भी छोड़ दिया, कोई अपने ननद की या दूसरों की लड़के को दूध पिला रही थी वो भी छोड़ दिया, सब कोई अंजन लगा रही थी एक आंख में अंजन लगाया दूसरे में नया उसी को छोड़ दिया, कोई गहने पहन रही थी तो पैर का पैर देख गले में और हाथ को पैर में पहन दिया चल पड़ी गई, उनमें से किसी किसी पतियों ने उनको रोका उन्होंने क्या किया वो सबसे पहले कृष्ण के पास में कैसे पहुंच गई और गोपियां जो शिक्षा गोपियां थी वो पहले पहुंच गई और पीछे से ये लोग भी पहुंची, कृष्ण समझाया अपने घर में लौट जाओ पतियों की सेवा करना परम धर्म है, पति लंगड़ा दूल्हा खोली निर्धन गरीब जैसा भी हो स्त्रियों को अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, तुमको धर्म उल्लंघन का पाप लगेगा, इसलिए लौट जाओ। गोपियों ने कहा वाह इतनी अच्छी शिक्षा देने वाले आप जैसे गुरु कहां मिलेंगे, तो ठीक है आपकी बात तो मानते हैं घर में लौट जाएंगे तो पहले दूसरी सेवा तो कर ले, किसी काम में दूसरा ही अर्चन पहले होता है, हम पहले आपकी सेवा कर ले इसके बाद में हम घर जाएंगे, और दूसरी बात हम जाएंगे कहां घर तो छोड़ा ही पति को छोड़ा ही नहीं, आज जिस धर्म का उल्लंघन कर चुकी है अब कहीं संसार में हमारा स्थान नहीं, इस प्रकार से यदि दोष है हमारे आने का और धर्म उल्लंघन का आप ही इसके कारण हैं, कृष्ण निरंतर हो अंत में उनके साथ महाराज इसका बहुत लंबा वर्णन उसमें राधिका जी मानकर करके चली गई, कृष्ण भी रात में सब गोपियों को छोड़ करके चले गए, यह रास लीला काम पर कृष्ण की विजय है, जैसे इंद्र को आप दर्प चूर्ण किया जमदी को जाकर के दर्शन किया उन्होंने उनकी वंदना की, शंकर और ब्रह्मा जी को तो जानते ही हैं इसलिए कामदेव ने सबको परास्त कर दिया किंतु कृष्ण ने काम को पराजय करने के लिए किया, और दूसरी बात राधा की सर्वश्रेष्ठता दिखलाने के लिए है, सब जितनी गोपियां हैं उन गोपियों में राधा जी यदि नहीं रही तो रास किस लिए, इसलिए सब गोपियों को छोड़ करके रात इसके बाद गोपियां हाय हाय करने लगी, कृष्ण राधा जी को लेकर गए उनको भी छोड़ दिया, फिर सब आकर के जमुना के कुंड में कीर्तन करने लगी, रो रही है कि कीर्तन कर रही है, इसके बाद में कृष्ण प्रसन्न होकर के करते गोपियां उनसे ताने मार रही थी, हम आपके लिए सब कुछ छोड़ करके आए और आप हमें छोड़ करके चले गए, कृष्ण ने कहा न पारे हम दुर्भाग्य तुम्हारा प्रेम हमारे प्रति निर्मल है, मैं देता हूं जैसी लंबी आयु पाकर के भी तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता, कदापि यदि तुम अपने सत् स्वभाव से साधु स्वभाव से हमें मुक्त नहीं कर दो किंतु मैं तो तुम्हारा एक ऋण ही हूं, से रासलीला समाप्त, नारद जी कृष्ण से मिले बोले जी महाराज आप तो प्रेम लाव में ही मग्न हो गए, आपको पता है आपके माता पिता को हथकड़ी में बंद करके और कितना कष्ट पंच देता अत्याचार रहा कर रहा उनको पेरेंटेंट कराता है, अपमान करता है। अब तो वहां पर तो जाना है, उनको सुनाना है, और इसके बाद में आपको जरासंध इत्यादि दानवों को मारना है। फिर द्वारका में जाना है, 16,108 रानियों से शादी करनी है, महाभारत के युद्ध में विषम पितामह द्रोण कर्ण अश्वत्थामा इत्यादि सब आस्थाई लोग हैं, धर्म अधर्म कर रहे हैं, इनको भी मारना होगा। आप भूल गए? ओ ठीक है। और इधर में नारद जी यहाँ से कह करके कंस के पास में गए, अरे देखो ये सब विष्णु है, विष्णु के दल वाले हैं, तुम्हारे मारने की तैयारी हो रही है, तुम पर दया मत करो। और वो घोर अत्याचार और करने लगा। नारद जी ने इसलिए कहा कि जितना ही जल्दी अत्याचार करेगा भगवान जल्दी। इस तरह से कंस दिन रात उन्हीं की चिंता करता था। अक्रूर को बुला करके कहा, अक्रूर ताऊ जी आप हमें बड़े शुभ चिंतक हैं, आप जल्दी प्रेरित नहीं जाए। और वहां से कृष्ण को और बलदेव को किसी प्रकार से समझा बुझा करके लाइए, यहाँ पर अंगेश्वर के लिए पूजा होगी शंकर की, और पूजा में कलकल होगा, उसमें बड़े बड़े पहलवान आएंगे, वो अपनी अपनी कला दिखलाएंगे, उसमें कृष्ण भी आए, उनके पिता माता को भी निमंत्रण करना, वो भी हमारा कर दे करके जाए। अक्रूर ने कहा जाएंगे भगवान क्या, जब मृत्यु निकट आती है तो कोई व्यक्ति नाग पुस्तक को अपने गले में लगा देता है, ये नहीं जानता है कि डरेगा। कृष्ण ने देखा कि हम जितने असुरों को भेजा ब्रज में, कोई लौट करके संवाद नहीं देने के लिए आज ये किया हुआ, उतना तो भेजा होगा उसको बका उसको अरिष्टा उसको, और किसने कुछ को कोई भी लौट करके नहीं आया, इसलिए ब्रज में उसको मारना कठिन था, इसलिए अपने किले में ले आए। और यहाँ पर चार लोग गुस्से की इत्यादि बड़े बड़े वीर हैं, हम लोग हैं, सभी लोग वीर करके उसे मारे। अक्रूर चाचा जी अक्रूर अच्छा तुम सत को अपने आप गले में लगा रहे हो, बुला रहे हो। अक्रूर जी ने कहा सोचा जी जब भगवान का इसी विषय दर्शन अपने तो घर के बाहर मनाते हुए नंदगांव में गए, और वहाँ पर कृष्ण और बलराम ने कहा कि नंद बाबा जो पिता होता है, और फिर समस्त ब्रजवासियों के बीच में नंद बाबा उनके सखा था, सखा थे, उनको सबको निमंत्रण किया, वे लोग भी अक्रूर के साथ में आए, और फिर सुबह देव को गया, उसमें मुखिया पावन को गई, रोने लगी, विलाप करने लगी। कृष्ण ने किसी प्रकार से समझाया, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर आऊंगा कंस को मार कर। इसलिए मुखियों ने किसी प्रकार से फैल दिया, जिसके बाद में कृष्ण आए और धनुष यज्ञ हो रहा था शंकर जी के निकट, वहां पर कंस ने बदबाला हाथी रखा था, क्या नाम कुबल्यालंकी, और कृष्ण ने प्रवेश करके और कुबल्या की मत पी करके और कृष्ण को मारने के लिए झपटा। कृष्ण ने बलदेव ने एक पूछ सूर पकड़ करके उसे इधर उधर करके गिरा करके उसके दांत उठा के किसी से मारा, महाओं को भी मारा, रक्षकों को भी मारा, और बीच की तरफ में उस दांतों को अपने कंठों पर लेकर के सूखे सीधे लगे में आगे चले, धनुष को उठाया, उसे तोड़ दिया पहले ही, और फिर रंगशाला में प्रवेश किया। रंगशाला मैंने जहाँ पर अखाड़ा होता है, वहाँ पर चारण मुस्लिम सल तोसल इत्यादि बड़े बड़े पहलवान, जिनका वज्र के समान शरीर था, कृष्ण को और बलदेव को हाथ पकड़ करके फेंक लिया अखाड़े में। तुम तो बड़े भी हो, उतना तो भासुर पकासुर को मारने वाले साधारण नहीं हो, इसलिए आज हम दंगल करके महाराज कंस को रिझाएंगे, प्रसन्न करेंगे। कृष्ण ने कहा जब तक छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, तुम लोग जंगल में खेल कूद में बड़े बड़े कसरत करके प्रयास करते हो, तुम हमने यदि तीर नहीं होता तो उन लोगों को कैसे मारा। अभी अभी कुबलजा के हाथी को भी मार डाला हमने और जबरदस्ती पकड़ करके राष्ट्र आस्पादन करने लगे। और बलदेव जी जब लड़ते लड़ते जब चारण ने कृष्ण को एक मुक्का मारा मारने के उद्देश्य जान से मार गए, कृष्ण ने उसे सह लिया और इसके बाद में उसको उठाकर पकड़ लिया और आकाश में घुमाते हुए उसे फेंक दिया वो मर गया। बलदेव जी ने इसी प्रकार उसकी को तल तल सब वीरों को मारा। इसके बाद में कंस के भाई लोग आए उनको भी मारा और कृष्ण सिंह की तरफ उछल करके ऊपर में कंस बैठा था बस उसकी टोपी पकड़ करके और गिरा दिया। लड़ने का समय भी नहीं और उसकी छाती पर ब्रह्मांड का भार लेकर के कूद पड़े वो बड़ी पर। अब तो कंस की स्त्रियां आकर के रोने लगी और सब लोग रो रहे हैं हाय हाय क्या हो गया। कृष्ण ने उनका संस्कार कराया। ठीक इस प्रकार से नंद बाबा कृष्ण नंद बाबा से कृष्ण मिले। नंद बाबा रो रहे थे उनको साहस दे करके सांत्वना दे करके बलदेव और कृष्ण को पूछते के लिए छोड़ करके कृष्ण लौटे और इनको गुरुगृह में संदीपनी मुनि के यहाँ पहुँच दो कृष्ण और बलदेव को भेज दिया। वहाँ उनका मुंडन हुआ वहाँ पर जाकर के गुरुकुल में कितने दिन 64 दिन रहे और 64 दिन में 64 कलाएं सब वेद परिषद शास्त्र पुराण का पारंगत हुए फगुन वेद और कितने प्रकार के मंत्र तंत्र सब में ये नृत्य कला में संगीत कला में निपुण हो गए 64 दिन। और गुरु को अपने पुत्र गुरु का पुत्र मर गया था उसको गुरुवाणी ने कहा कि हमारे पुत्र को ला दो। कृष्ण जम से पुरी से जाकर के उनके पुत्रों को लेकर के ले गया। इस प्रकार से कृष्ण लौट करके और गुरुकुल से फिर मथुरा में आए। उस समय एक दिन हड़ताली पर चढ़ करके उत्तर की तरफ में वृंदावन की तरफ गए और उनको बड़ी की याद आई। कैसी याद आई अब कृष्ण महाराज जी इसका विवरण आप लोगों को सुना है। अब ये लीला अब तक तो ब्रज की थी अब इसको माथुर लीला कहते हैं। कृष्ण मथुरा चले गए वहां से क्या क्या लीलाएं की हैं इसका वर्णन करते हैं। चलो इसके बाद माथुर लीला कहते हैं
हम सभी को सुनाए भगवान ने व्रत के दिया है वे व्रत का आस्वादन किया साथ ही गोपियों के विप्रलंभ में कितना भाव उदय होता उस भाव समर्थन करता आस्वादन उसको जगत में प्रकाशित करता जिसे देखकर लोग समर्पित हो जाए और सभी उनका अनुरक्त स्वीकार करें उन भावों को प्राप्त करें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और वृंदावन की झाड़ियों में उनके ज्ञान की गठरी खुलती जा रही है। पहले तो उन्होंने कुछ ब्रज लीला में जैसे सभी आनंदमय सभी खुशहाली में यह सब देखते थे परंतु ज्यों ज्यों नंद गांव की ओर आगे बढ़ने लगे त्यों त्यों उनको कृष्ण विरह की सारी स्थितियां दिखाई देने लगी। उस समय सभी विरह उन्माद में खोए हुए डूबे थे। जब नंद भवन के पास में पहुंचे सड़क पर आए कुछ लोग वहां आए देखा कि ये सोने का रथ जरूर कोई मथुरा से आया होगा। निकट में आकर के देखा कि ये उद्धव जी आए उसे लेकर के नंद बाबा के पास में गए उनसे मिलाया। उद्धव जी ने प्रणाम की नंद बाबा ने गले लगाया, आंखों के आंसू बहाते रहे। इसके पश्चात किसी ब्रजवासी से कहा, हम लोग बिना खाए पिए कृष्ण के लिए जैसे भी हो हम रह रहे हैं। उद्धव बहुत दूर से आया है मथुरा, पर उसे दिन भर कुछ खाया पिया, इसलिए उसके लिए कुछ भोजन बना के लाए। तब तक ब्रज में सभी कृष्ण के विरह में अधीर, किसी के घर में कोई भोजन पानी नहीं बनता। जब से कृष्ण गए तब से नंद बाबा यशोदा मैया दीवारात रोते रहे। यशोदा मैया तो मुंह के ऊपर कपड़ा ढक ली, कृष्ण के बिना मैं और कुछ भी नहीं देखूंगी, दीवारात रोती रहे। माताएं आकर के सांत्वना देती हैं, पर तू कहां धैर्य बनता। नंद बाबा भी एक योगी की भांति बैठे हुए दीवारात रोते हुए अंधे जैसे ही बन गए। व्रत की गौएं जितने हैं कृष्ण के विरह में अधीर होकर घास खाना और गोचारण में वन में जाना वो भी छोड़ दिया, बछड़े भी दूध भी नहीं पिया करते। इसी प्रकार कोयल अब कुहू कुहू आवाज नहीं करती, मोर मोरनी केका धनी से पेखम उठाकर अब नाचते भी नहीं, भौरे फूलों में बैठकर मधुपान भी नहीं करते। इस प्रकार सभी कृष्ण के विरह में अधीन। उधर जितने भी सखा लोग हैं सुबल सुदाम मधुमंगल आदि कृष्ण के विरह में अधीन होकर कहीं किसी वन में एकांत में खड़े हैं, दीवारात रो रहे हैं। व्रत की गोपियां जब कृष्ण ब्रज से गए उस समय वे उद्धव क्यारी बांध जहां गोपियां कृष्ण के रात को घेर ली थी, कृष्ण ने सांत्वना दी और रात को आगे बढ़ाकर चले गए। गोपियां उनके पीछे पीछे करते हुए कुछ दूर गई जब तक रात का निशानी दिखता रहा, उसी वन में पड़ी रही। तब से राधा जी तो मूर्छित होकर के पड़ी थी, गोपियां वहां कृष्ण के विरह में अधीर होकर के तब से प्रतीक्षा कर रही, किसी ने अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया। नंद बाबा ने जो कि नंद भवन में चूल्हे में मकड़ी का जाल हो गया,
I'm
बोलने को जाते हैं तो उतना ही वे शीशक शीशक कर रोने लगते। कृष्ण का स्मरण करते ही उनका गला भर जाता है। उस समय नंद बाबा किसी प्रकार से अपने को रोकते हुए उद्धव से पूछा कि उद्धव यह बता, अब तो देवकी वसुदेव कुशल से है मथुरापुरी में, अब तो कोई कष्ट नहीं, दैव से वह कंस और बारह मथुरापुरी का सब समस्या का हल हुआ, क्या हमारे कृष्ण बलराम कुशल से वे क्या कर रहे हैं, कौन आए? इतना कहते हैं वे अतिशय धैर्य को खो गए। उस समय नंद बाबा बड़े विकल होकर के रोते रहे, उद्धव जी अब उनके इस प्रकार भाव ऐसे रोते हुए देख वे क्या कहेंगे, उनके कुछ मस्तिष्क में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं बैठा, जो कुछ भी सोचते हैं कुछ भी बोलने का नहीं। उस समय बहुत देर पश्चात उद्धव ने नंद बाबा को सांत्वना देने के लिए कुछ कहने लगे कि बाबा आप तो बड़े सौभाग्यवान, कृष्ण आपसे कहीं दूर नहीं, वे सदैव आपके हृदय में, क्योंकि वे कोई साधारण तो बालक तो नहीं है, आपका पुत्र है, परंतु वे परब्रह्म परमेश्वर स्वयं भगवान है, वे आपके हृदय में सर्वदा अवस्था करते, कहीं आपसे दूर नहीं, ऐसा जानकर आप अपने को धन्य हैं। उस समय नंद बाबा बोले कि उद्धव ये क्या तुम बोलते हो, मैंने तो सोचा कि कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं अपना पुत्र समझा, कभी तो उसको मैंने परमेश्वर या भगवान परब्रह्म ये तो नहीं समझा, और तुम कहते हो वह परमेश्वर, आज उन्हें पा करके मैं खो बैठा, तो मेरे जैसे दुर्भाग्य और कौन, आज वे मुझसे बहुत दूर चले, आज कैसे मैं जीऊं, कैसे उनको भूलूं, ये संभव नहीं। इस प्रकार नंद बाबा बहुत से प्रसन्न छो, पिता है तो एकमात्र दशरथ महाराज जी पिता है, जिन्होंने एक बार हा राम कहा तो उनका प्राण पखेर उड़ गया, परंतु आज तक मेरा प्राण पखेर उड़ा नहीं, कृष्ण कहते हुए अभी भी मैं जीवा, परंतु यह प्रेम की रीति है कि प्राण छोड़ना तो अति सहज बात है, पर प्राण धारण करना बड़ा कठिन, जो नंद बाबा का औलाद वात्सल्य प्रेम इस प्रकार विरह में बैकुंठ होकर नंद बाबा कहने लगे, जब कृष्ण कन्हैया को भूख लगता है एक मिनट का भी देर सहन नहीं होता तो घर के बर्तन सारे तोड़ डालते, यशोदा के गोदी में जब तक बैठ कर दूध नहीं पिया तब तक उसको साथ, मेरे गोदी में बैठकर मेरे चबाए हुए पान को निकाल करके जब तक नहीं खा लेता तब तक उसको चैन था, परंतु आज अपने उस बात उस पुत्र को उस बालक को हमने ही खो बैठा, मैं दूर चला, आज घर की हर एक चीज एक वस्तु हर एक वस्तु कृष्ण की याद कर मैं